हमारे आसपास तरह तरह के लोग पाए जाते हैं। इनमें गरीब भी होते हैं और अमीर भी। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ज़िंदगी की नेमतों से महरूम हैं, लेकिन दूसरे खुशहाल लोगों को देखकर हालात से समझौता और सब्र कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो अनोखे तरीक़े अपनाकर ज़िंदगी गुजारते हैं। आज हम जो अफसाना सुनने वाले हैं, उसमें एक ऐसा ही किरदार पेश किया गया है। अफसाना उर्दू में मख्तसर सी कहानी को कहा जाता है। तो इस अफसाने का जो किरदार है, जो अपनी गुरबत और महरूमियों के बावजूद ख़ुद को समाज में आसूदा हाल और बेफिक्र बनाकर पेश करता है। मुसन्निफ़ ने इस अफसाने के ज़रिए उन लोगों पर गहरा तंज किया है जो ज़ाहिरी शान व शौकत के दिलदादा होते हैं और अपनी हैसियत को भूल कर अमीरों की नखाली करती हैं। ऐसा करने से समाज में इन्हें आर्जी तौर पर इज्जत तो मिल जाती है, मगर आखिरत में नदामत और ज़िल्लत ही उनके हाथ आती है। ओवरकोट फैशन और ज़ाहिर परस्ती की अलामत बनकर उभरता है। यह अफसाना लिखा है ग़ुलाम अब्बास ने। ग़ुलाम अब्बास 17 नवंबर 1909 को अमृतसर में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम लाहौर के दयाल सिंह हाई स्कूल में हासिल की। वो महकमे तालीमात से मुंसलिक थे। फिर 1949 में बीबीसी लंदन में वो प्रोड्यूसर के ओहदे पर फायज हुए। अफसाना निगारी के साथ साथ उन्हें ड्रामा निगारी और मौसीकी से भी दिलचस्पी थी। ग़ुलाम अब्बास के अफसानवी मजमूए आनंदी, जाड़ी की चांदी और कम रस को उर्दू अदब में अहम मकाम हासिल है। उन्होंने गोंदनी वाला तकिया के नाम से एक नावल भी लिखा है। इनका दूसरा नावल जज़ीरे सुकन वरा एक फ्रांसीसी नावल से माखूज़ है। वो बड़े रोशन ख्याल अदीब थे। इनकी अदबी खिदमात के पेश नज़र इन्हें कई एजाजात से नवाजा गया। मुख्तलिफ मगरबी ज़मानों में इनके अफसाने के तर्जुमे हुए हैं। 2 नवंबर 1982 को ग़ुलाम अब्बास का कराची में इंतकाल हुआ। आप सुन रहे हैं उर्दू अदब पॉडकास्ट, मैं हूँ ख्वाजा मोइनुद्दीन। आइए सुनते हैं ओवर कोट ग़ुलाम अब्बास का लिखा हुआ ये अफसाना। जनवरी की एक शाम, एक खुशपोश नौजवान डेविस रोड से गुजरकर माल रोड पर पहुंचा और चेयरिंग कर उसका रुख करके खिरामा खिरामा पटरी पर चलने लगा। जनवरी की एक शाम, एक खुशपोश नौजवान डेविस रोड से गुजरकर माल रोड पर पहुंचा और चेयरिंग क्रॉस का रुख करके खिरामा खिरामा पटरी पर चलने लगा। ये नौजवान अपनी तराश खराश से खासा फैशनेबल मालूम होता था। लंबी लंबी कलमें, चमकते हुए बाल, बारीक बारीक मूछें गोया सुरमे की सिलाई से बनाई गई हों, बादामी रंग का गर्म ओवरकोट पहने हुए जिसके काज में शरबती रंग के ग्लास का एक अध खिला हुआ फूल अटका हुआ, सर पर सब्ज फ्लैट हैट एक ख़ास अंदाज से टेढ़ी रखी हुई, सफ़ेद सिल्क का ग्लोबन गले के गिर्द लिपटा हुआ, एक हाथ कोट की जेब में, दूसरे में बेद की एक छोटी छड़ी पकड़े हुए जिसे कभी मज़े में आके घुमाने लगता था। यह हफ्ते की शाम थी, भरपूर जाड़े का ज़माना। सर्द और तुंद हवा किसी तेज़ धार की तरह जिस्म पर आके लगती थी, मगर उस नौजवान पर उसका कुछ असर मालूम नहीं होता था। और लोग ख़ुद को गर्म करने के लिए तेज़ तेज़ कदम उठा रहे थे, मगर उसे इसकी ज़रूरत ना थी। जैसे इस कड़कड़ाते जाड़े में उसे टहलने में बड़ा मज़ा आ रहा हो। उसकी चाल ढाल से ऐसा बांकपन टपकता था कि टांगे वाले दूर ही से देखकर सरपट घोड़ा दौड़ाते हुए उसकी तरफ लपकते, मगर वो छड़ी के इशारे से नहीं कर देता। एक खाली टैक्सी भी उसे देखकर रुकी, मगर उसने नो थैंक यू कहकर उसे भी टाल दिया। रास्ते में वो सड़क आई जो लॉरेंस गार्डन की तरफ जाती थी, मगर उस वक्त शाम के धुंधलके और कोहरे में इस बाग पर कुछ ऐसी उदासी बरस रही थी कि उसने उधर का रुख ना किया और सीधा चेयरिंग क्रॉस की तरफ चलता रहा। मलका के बुत के करीब पहुंचकर उसकी हरकत और सकनात में किसी कदर मतानत आ गई। उसने अपना रुमाल निकाला और हल्के हल्के चेहरे पर फेरा ताकि गर्द जम गई हो तो उतर जाए। पास ही घास के एक टुकड़े पर कुछ अंग्रेज़ बच्चे बड़ी सी गेंद से खेल रहे थे। वो रुक गया और बड़ी दिलचस्पी से उनका खेल देखने लगा। नौजवान की नज़र सीमेंट के खाली बेंच पर पड़ी और वो उस पर आके बैठ गया। उस वक्त शाम के अंधेरे के साथ साथ सर्दी और भी बढ़ती जा रही थी। माल रोड पर मोटरों, टांगों और बाइसाइकिलों का तांता बंधा हुआ था। हुआ तो था ही, पटरी पर चलने वालों की भी कसरत थी। सड़क की दो रवैया दुकानों में खरीदो फरोख्त और बाजार भी गर्म था। जिन कम नसीबों को न तफरीह तबाह की इस्तेआत थी न खरीदो फरोख्त की, वो दूर ही से खड़े खड़े इन तफरी गांवों और दुकानों की रंगारंग रोशनियों से जी बहला रहे थे। नौजवान सीमेंट की बेंच पर बैठा अपने सामने से गुजरते जन व मर्द को गौर से देख रहा था। उसकी नज़र उनके चेहरों से कहीं ज़्यादा उनके लिबास पर पड़ती थी। इनमें हर वजह और हर खुमाश के लोग थे। बड़े बड़े ताजिर, सरकारी अफसर, लीडर, फनकार, कॉलेजों के तलबा व तालिबात, नर्सें, अखबारों के नुमाइंदे, दफ्तरों के बाबू, ज़्यादातर लोग ओवर कोट पहने हुए थे। हर किस्म के ओवर कोट, बेशकीमत ओवर कोट से लेकर पुराने ओवर कोट तक, जिन्हें नीलाम में ख़रीदा गया था। नौजवान का अपना ओवर कोट था तो खासा पुराना, मगर इसका कपड़ा खूब बढ़िया था। फिर वो सिला हुआ भी किसी माहिर दर्जी का था। इसको देखने से मालूम होता था कि इसकी बहुत देखभाल की जाती है। कॉलर खूब जमा हुआ था, बाहों की क्रीज बड़ी नुमाइयाँ, सिलवट कहीं नाम को नहीं, बटन सींग के बड़े बड़े चमकते हुए। नौजवान इस कोट में बहुत मग्न मालूम होता था। एक छोटी सी सफ़ेद रंग की बिल्ली सर्दी में ठिठी हुई बेंच के नीचे इसके कदमों में आकर म्याऊं म्याऊं करने लगी। उसने पिचकारा तो उछलकर बेंच पर आ चढ़ी। उसने प्यार से इसकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा, पुअर लिटिल सोल। इसके बाद वो बेंच से उठ खड़ा हुआ और सड़क को पार करके इसकी तरफ चला, जिधर सिनेमा की रंग बिरंगी रोशनियाँ झिलमिला रही थी। बरामदे में भीड़ ना थी, सिर्फ चंद लोग थे जो आने वाली फिल्मों की तस्वीरों का जायज़ा ले रहे थे। तीन नौजवान एंग्लो इंडियन लड़कियां इन तस्वीरों को शौक से देख रही थीं। एक ख़ास शान इस्तगना के साथ वो भी इनके साथ साथ मगर मुनासिब फासले से इन तस्वीरों को देखता रहा। लड़कियां आपस में हंसी मजाक की बातें भी करती जा रही थीं और फिल्म पर राय देनी भी। फिर वो तीनों हंसती हुई बाहर निकल गईं। थोड़ी देर के बाद नौजवान भी सिनेमा की इमारत से बाहर निकल आया। अब 7 बज चुके थे और वो माल रोड की पटरी पर पहले की तरह मटर गश्त करता हुआ चला जा रहा था। थोड़ी दूर चल के उसे अंग्रेज़ी मौसीकी के आलात की एक बड़ी सी दुकान नज़र आई। वो बिला तकल्लुफ अंदर चला गया। हर तरफ शीशे की अलमारियों में तरह तरह के अंग्रेज़ी साज रखे हुए थे। एक हिस्पानवी गिटार पर, जो एक खूंटी से टंगी हुई थी, नौजवान ने नाकेदाना नज़र डाली और उसके साथ कीमत का जो टिकट लटक रहा था उसे पढ़ा। उससे ज़रा हटकर एक बड़ा जर्मन पियानो रखा हुआ था। इसका कवर उठा के उंगलियों से बास पर्दों को इसने टटोला, फिर कवर को बंद कर दिया। पियानो की आवाज़ सुनकर दुकान का एक कारिंदा उसकी तरफ बढ़ा। गुड इवनिंग सर, कोई खिदमत? नहीं शुक्रिया। हाँ, इस महीने की ग्रामोफोन रिकॉर्ड की फहरिस्त दे दीजिए। फहरिस्त लेकर नौजवान ने ओवरकोट की जेब में डाली, दुकान से बाहर निकल आया और फिर चलना शुरू कर दिया। रास्ते में एक छोटा सा बुक स्टॉल पड़ा। नौजवान यहाँ भी रुका। कई ताज़ा रिसालों के वर्क उल्टे। वो जहाँ से रिसाला उठाता बड़ी एहतियात से वहीं रख देता और आगे बढ़कर खालिनों की एक दुकान ने इसकी तवज्जो को जज़्ब किया। मालिक दुकान ने, जो एक लंबा सा चोगा पहने और सर पर कला रखे था, गर्मजोशी से इसकी आवभगत की। ज़रा ये ईरानी खालीन देखना चाहता हूँ। उतारिए नहीं, यहीं से देख लूँगा। क्या कीमत है इसकी? 1430 रुपये है। नौजवान ने अपने भावों को सुखेड़ा, जिसका मतलब था, ओहो इतनी? दुकानदार ने कहा, आप पसंद कर लीजिए, हम जितनी भी रियायत कर सकते हैं कर देंगे। शुक्रिया, लेकिन इस वक्त तो मैं सिर्फ एक नज़र देखने आया हूँ। शौक से देखिए, आप ही की दुकान है। वो 3 मिनट के बाद इसकी दुकान से भी निकल आया। उसके ओवरकोट के काज में शरबती रंग का गुलाब जो अध खिला फूल निकला हुआ था उस वक्त कार से कुछ ज़्यादा बाहर निकल आया था। जब वो इसको ठीक कर रहा था तो उसके होंठों पर एक खफीफ और पुरअसरार मुस्कुराहट नमोदार हुई और इसने फिर अपनी मटर गश्ती शुरू कर दी। अब वो हाईकोर्ट की इमारतों के सामने से गुजर रहा था। इतना कुछ चल लेने के बाद इसकी उसको थकान महसूस हुई थी ना उकताहट। यहाँ पटरी पर चलने वालों की टोलियाँ कुछ चट सी गई थी और उनमें काफ़ी फसल रहने लगा था। इसने अपनी बेत की छड़ी को एक उंगली पर घुमाने की कोशिश की मगर कामयाबी न हुई और छड़ी ज़मीन पर गिर पड़ी। ओ सॉरी कहकर वो ज़मीन पर झुका और छड़ी को उठा लिया। नौजवान ने शाम से अब तक अपनी मटर गश्ती के दौरान में जितनी इंसानी शक्लें देखी थी इनमें से किसी ने भी इसकी तवज्जो को अपनी तरफ मुनतव नहीं किया। वो अपने हाल में ऐसा मस्त था कि किसी दूसरे से उसे सरोकार ही ना था। अभी उसने आधी सड़क पार की होगी, ईंटों से भरी हुई एक लारी पीछे से बगोले की तरह आई और उसे रोंती हुई मैकलोड रोड की तरफ निकल गई। लारी के ड्राइवर ने नौजवान की चीख सुनकर पल भर के लिए गाड़ी की रफ्तार कम की, फिर वो समझ गया कोई लारी की लपेट में आ गया है। वो रात के अंधेरे से फ़ायदा उठाते हुए लारी को ले भागा। दो तीन राहगीर जो इस हादसे को देख रहे थे शोर मचाने लगे कि नंबर देखो नंबर देखो, मगर लारी हवा हो चुकी थी। इतने में कई और लोग जमा हो गए। ट्रैफिक का एक इंस्पेक्टर जो मोटरसाइकिल पर जा रहा था रुक गया। नौजवान की दोनों टांगें बिल्कुल कुचली गई थी, बहुत सा खून निकल चुका था और वो सिसक रहा था। फौरन एक कार को रोका गया और उसे जैसे तैसे उसमें डालकर बड़े अस्पताल रवाना कर दिया गया। जिस वक्त वो अस्पताल पहुंचा तो उसमें अभी रमक भर जान बाकी थी। उस अस्पताल के शोबे हादसात में असिस्टेंट सर्जन मिस्टर खान और दो नौ उम्र नर्सेस मिस शहनाज और मिस गुल ड्यूटी पर थीं। जिस वक्त उसे स्ट्रेचर पर डाल के ऑपरेशन रूम में ले जाया जा रहा था इन नर्सों की नज़र उस पर पड़ी। इसका बादामी रंग का ओवरकोट अभी तक उसके जिस्म पर था और सफ़ेद सिल्क का मफलर गले में लिपटा हुआ था। इसके कपड़ों पर जा बजा खून के बड़े बड़े धब्बे थे। किसी ने अजराह दर्दमंदी इसकी सब्स फ्लैट हैट उठाकर उसके सीने पर रख दी थी ताकि कोई उड़ाना ले जाए। शहनाज ने गुल से कहा, किसी भले घर का मालूम होता है बेचारा। गुल दबी आवाज़ में बोली, खूब बन ठन के निकला था बेचारे हफ्ते की शाम मनाने। ड्राइवर पकड़ा गया या नहीं? नहीं, भाग गया। कितने अफसोस की बात है। ऑपरेशन रूम में असिस्टेंट सर्जन और नर्सें चेहरों पर जिराही के नकाब चढ़ाए, जिन्होंने उनकी आंखों से नीचे के सारे हिस्से को छुपा रखा था, उसकी देखभाल में मसरूफ थे। उसे संगमरमर की मेज पर लिटा दिया गया। ऑपरेशन रूम में असिस्टेंट सर्जन और नर्सें चेहरों पर जराही के नकाब चढ़ाए जिन्होंने उनकी आंखों से नीचे के सारे हिस्से को छुपा रखा था उसकी देखभाल में मसरूफ थे उसे संगमरमर की मेज पर लिटा दिया गया। उसने सर में जो तेज खुशबूदार तेल डाल रखा था उसकी कुछ महक अभी तक बाकी थी। पट्टियाँ अभी तक जमी हुई थी। हादसे से इसकी दोनों टांगें तो टूट चुकी थी मगर सर की मांग नहीं बिगड़ने पाई थी। अब उसके कपड़े उतारे जा रहे थे। सबसे पहले सफ़ेद सिल्क ग्लोबंद उसके गले से उतारा गया। अचानक नर्स शहनाज और उस नर्स गुल ने बेक वक्त एक दूसरे की तरफ देखा। उससे ज़्यादा वो कर भी क्या सकती थी। चेहरे जो दिली कैफियत का आईना होते हैं जराही के नकाब तले छुपे हुए थे और ज़बानें बंद। नौजवान के ग्लोबंद के नीचे निक टाई और कॉलर क्या सिरे से कमीज ही नहीं थी। ओवरकोट उतारा गया तो नीचे से एक बोसीदा ऊनी स्वेटर निकला जिसमें जा बजा बड़े बड़े सुराख थे। इन सुराखों से स्वेटर से भी ज़्यादा बोसीदा और मैला कुचला एक बनियान नज़र आ रहा था। नौजवान सिल्क के ग्लोबंद को कुछ इस ढप से लपेटे रखा था कि उसका सारा सीना छुपा रहता था। उसके जिस्म पर मैल की तहें खूब चढ़ी हुई थी। जाहिर होता था कि वो कम अज़ कम पिछले दो महीने से नहीं नहाया। अलबत्ता गर्दन खूब साफ थी और इस पर हल्का फुल्का पाउडर लगा हुआ था। स्वेटर और बनियान के बाद पतलून की बारी आई और शहनाज और गुल की नज़रें फिर बैक वक्त उठी। पतलून को पेटी के बजाय एक पुरानी धज्जी से जो शायद कभी निकटाई रही होगी खूब कस के तरह बांधा गया था। और बटन बक्सोए गायब थे। दोनों घुटनों पर से कपड़ा मस्क किया गया था और कई जगह खोंचे लगी थी, मगर चूंकि ये हिस्से ओवरकोट के नीचे रहते थे इसलिए लोगों की नज़र इन पर नहीं पड़ती थी। अब बूट और जुराबों की बारी आई और एक मरतबा फिर मिस शहनाज और मिस गिल की आँखें चार हुईं। बूट तो पुराने होने के बावजूद खूब चमक रहे थे, मगर एक पाँव की जुराब दूसरे पाँव की जुराब से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। फिर दोनों जुराबें फटी हुई भी थीं, इस कदर के इनमें से नौजवान की मैली मैली एड़ियाँ नज़र आ रही थीं। बिलाशुबा इस वक्त वो दम तोड़ चुका था। उसका जिस्म संगे मरमर की मेज़ पर बेजान पड़ा था। उसका चेहरा जो पहले छत की सिम था, कपड़े उतारने में दीवार की तरफ मुड़ गया था। मालूम होता था कि जिस्म और इसके साथ रूह की बरहंगी ने उसे खजल कर दिया है और वो अपने हम जिंसों से आँखें चुरा रहा है। इसके ओवरकोट की मुख्तलिफ जेबों से जो चीज़ें बरामद हुईं वो ये थीं: एक छोटी सी सिया कंघी, एक रुमाल, 6.5 आने, एक बुझा हुआ सिगरेट, एक छोटी सी डायरी जिसमें नाम और पते लिखे थे, नए ग्रामोफोन रिकॉर्ड की एक महाना फहरिस्त और कुछ इश्तहार जो मटर गश्त के दौरान इश्तहार बांटने वालों ने उसके हाथ में थमा दिए थे और उसने उन्हें ओवरकोट की जेब में डाल दिया था। अफसोस कि उसकी बेत की छड़ी जो हादसे के दौरान कहीं खो गई थी इस फहरिस्त में शामिल न थी।